नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण पर केंद्रित कार्यक्रम सीप के मोती। हमारे जीवन का आधार हैं विचार, संस्कार, जीवन शैली और कार्य व्यवहार। इन चारों तत्वों के परिष्कार का प्रयास है हमारा कार्यक्रम सीप के मोती। प्रस्तुत है सर्वांगीण विकास और चरित्र निर्माण पर केंद्रित इस कार्यक्रम का आज का अंक। जीवन लम्हों पर कदम रखता हुआ आगे बढ़ता है और समय बीतता जाता है। इस गुजरते समय के साथ बदलाव छुप कर आता है और जीवन की तहों में प्रवेश करता है, और जब हम पलट कर देखते हैं तो बीते सालों में बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन बदलते इस परिवेश में कुछ समाज ऐसे भी हैं जहां वक्त धीमी रफ्तार से चला, परिवर्तन की रफ्तार भी यहां कम ही रही। अपनी लय में डूबे ये लोग अपनी तरह से अपने होने को बचाए हुए हैं। अपने अस्तित्व की आदिम गंध समेटे ये अपनी ही धुन में जीते हुए लोग हैं। जी हाँ, ये लोक का संसार है जहां बची हुई है आज भी मिट्टी की सौंधी सी महक और बचा हुआ है मिट्टी का मन भी। ये लोक का संसार है जहां बचा हुआ है कोई पहाड़ी झरना और पानी का मन भी। यहां पैरों के नीचे बची हुई है ऊंची नीची जमीन और बचा हुआ है इसके पोर पोर से उठता जीवन संगीत। ये संगीत किसी अवसर का मोहताज नहीं है, यहां सहज जीवन व्यवहार ही नृत्य संगीत का अवसर है। संघर्ष से भरी दैनिक दिनचर्या हो, खेती किसानी हो, मौसमों का बदलना हो या जीवन से जुड़े संस्कार हो, गीत संगीत सहज ही किसी झरने की तरह यहां फूट पड़ता है। और ये स्वर समवेत के हैं, जीवन यहां साथ चलता है, साथ गाता साथ नाचता है। गौर से देखें तो ये लोकगीत केवल आनंद का उत्सव नहीं है, इन लोकगीतों में एक गुजरा हुआ समय ठहरा हुआ है, एक इतिहास छिपा है। इन लोकगीतों से झलकती है हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी आस्थाएं, हमारे संस्कार, हमारे अनुष्ठान। तो आज सीप के मोती कार्यक्रम में लोकगीतों में अंतर्निहित इतिहास एवं संस्कृति, इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष इतिहास विभाग, डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर। नमस्कार ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
नमस्कार सुनीता जी।
बहुत ही सुंदर और लुभावना सा विषय है आज का, लोकगीतों में अंतर्निहित इतिहास और उसकी संस्कृति को हम जानना चाहेंगे। देखिए, जो लोकगीत हैं वो अपनी परंपराओं के साथ चलते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं, इनका कोई लेखक नहीं होता, एक कंठ से दूसरे कंठ तक ये पहुँचते हैं। तो हम जानना चाहते हैं ब्रजेश जी सबसे पहले कि लोकगीतों में इतिहास किस तरह मिलता है।
जब इतिहास की बात होती है तो इतिहास के कई स्कूल से, जैसे ओरिएंटलिस्ट स्कूल, इंपीरियलिस्ट स्कूल, नेशनलिस्ट स्कूल, सबाल्टर्न स्कूल, पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कूल, लेकिन बाद में ये आया कि भाई एक रीजनल हिस्ट्री भी होना चाहिए, क्षेत्रीय होना चाहिए। भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें पढ़ते पढ़ते कई गैप्स रहते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ पर ये गैप कैसे है। लेकिन जब हम ओरल हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, जब लोकगीतों की तरफ जाते हैं, किंवदंतियों की तरफ जाते हैं, लोक गाथाओं की तरफ जाते हैं, तो उनमें कुछ ऐसा इतिहास मिलता है जो अचानक से जब सामने आता है तो जो गुत्थी हमारी अनसुलझी थी भारतीय इतिहास की वो सुलझ जाती है। जैसे आपने कहा इतिहास कैसे मिलता है, तो लोकगीतों में एक लोकगीत मिलता है हमें, और उस लोकगीत में हमें मिला कि का कहिए बानपुर बारे की, मर्दन सिंह नपत जुझारे की, सेना सदन भजन रम तूला, छोटे समर नगारे की, अंग्रेजन के घरे उतर गई, पैनी धार उधारे की। तो इस लोकगीत को जब हमने देखा तो इसमें ये तो स्पष्ट तय पता चल रहा था कि कोई बानपुर के राजा हैं मर्दन सिंह, क्योंकि नपत मिल और अंग्रेजों पर उनका आतंक है। लेकिन ये सिर्फ लोकगीत से हम इसको कैसे माने। फिर हमने आर्काइवल स्टडी की, आर्काइवल सोर्सेज को देखा, फिर बाद में मालूम चला कि रानी लक्ष्मीबाई बानपुर के राजा से हमेशा मदद मांगती थी, सलाह लेती थी। और फिर जो कमिश्नर थे सागर नर्मदा टेरिटरी के, उनके जो प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर जो आर एम सी हैमिल्टन थे ललितपुर के, वो उनको पत्र भेजते थे साप्ताहिक, उनमें ये बानपुर के राजा की जिक्र मिलता है और उसमें पता चलता है कि राजा बाकी में ऐसा था कि अंग्रेज से घबराते थे। दूसरा एक कोई खबर मिलता है बुढ़वा मंगल से संबंधित, उसमें मिलता है कि द्विज कुसुर का परिचित को कटक मिलता है, उसमें मिलता है कि बुढ़वा मंगल कीन श्री रत्नेश नरेश ने जुरे सकल परवीन कौल भगवती सीज पर बुढ़वा मंगल में जुरे राजन सहित नवाब रहना जावे देश में कलकत्ते को साथ। तो आप देखिए इससे एक पता चलता है कि बुढ़वा मंगल की श्री रत्नेश नरेश ने, यानी रतन सिंह राजा ने बुढ़वा मंगल का आयोजन किया। फिर जब इसको डिटेल में खोजा गया तो पता चला कि सरकारी के राजा रतन सिंह थे और जुड़े सकल परवीन कौल भगवती चीज पर, तो उससे पता चला कि कई राजे रजवाड़े जागीरदार रवारीदार कमबिस्तार इस बुढ़वा मंगल में आए थे और उन्होंने माँ भगवती के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई। और वो कसम क्या खाई कि रहना जावे देश में कलकत्ते को साथ, यानी कलकत्ते को साथ, क्योंकि अंग्रेज कलकत्ता में उस समय राजधानी थी उनकी, तो अंग्रेज भारत में रहना पाए। तो आप देखिए कितना अच्छा इतिहास मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इस लोकगीत से ही पहली बार ये पता चलता है कि अखिल भारतीय स्तर पर स्वाधीनता का पहला प्रस्ताव इसी चरखारी में बुढ़वा मंगल में पारित किया गया।
तो ये बहुत ही रोचक बात आपने बताई और वास्तव में सच भी है कि जो लोक संस्कृति है, जो लोक गीत है, वो अपने जीवन को गाते हैं। वो जो लोग हैं सहज रूप से जो उनके आसपास हो रहा है, जो वो जी रहे हैं, जो वो देख रहे हैं, वही उनके गीत संगीत का हिस्सा है। तो जाहिर बात है कि जिस वक्त ये सारी घटनाएं घटी उसको भी उन्होंने उसी तरह स्वीकारा और उसी तरह अपने गीतों में उतार लिया। तो इस तरह से इतिहास लोक गीतों में प्रकट होता है। एक सवाल जरूर मन में आता है ब्रजेश जी कि लोक गीतों में जो इतिहास मिलता है वो सत्य है या नहीं, ये कैसे तय हो पाता है कि वो प्रामाणिक है, वो सत्य है?
सुधा जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और आपको बता दें कि जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे और जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे अंग्रेज इतिहासकार, उन्होंने यही कहा था कि ये जो लोक साहित्य लोक गीत है इनकी कोई वैलिडिटी नहीं है, तो इनको हम शामिल नहीं कर सकते। लेकिन आपको बता दें कि जब इसको शामिल किया और जब खोजा गया तो आप देखिए कि जैसे बुढ़वा मंगल किन सी रत्नेश नरेश ने, तो हमने इसका डेट मालूम किया तो पता चला कि ये 1836 में आयोजित किया गया था। उसी समय जब यह बात अंग्रेजों को पता चली तो जो जबलपुर के डब्ल्यूसी आटकन जो कमिश्नर थे उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग रखी राजा रजवाड़ाओं के साथ और उनको आमंत्रित किया। यही कारण है कि इसमें मात्र 42 रियासतों के राजे रजवाड़े जागीरदार एकत्रित हो पाए, बाकी लोग वहां चले गए। तो इससे पता चला कि उनको ये जानकारी थी और उन्होंने ऐसा किया। और राजा मदन सिंह की भी बात आती है तो भी जानकारी हमें जब आर्काइव में हमने देखा तो उसमें पत्र में मिलता है कि हिरोली मौजा में बानपुर के राजा मदन सिंह के साथ काफी युद्ध हुआ। तो बाद में मालूम चला कि हिरोली जो कि एच जैसा लग रहा था एक्चुअली वो नरियावली है, और नरियावली में एक युद्ध हुआ था जिसमें लेफ्टिनेंट डुवाल घायल हुए थे और फ्रेयर मारे गए थे। तो ऐसी जानकारी हमें आर्काइवल सोर्सेज से उसको हम टैली करते हैं, तब हम जाकर इतिहास का अंत बनाते हैं।
तो एक प्रामाणिकता उसकी आप तलाश करते हैं और जब वो मिलती है तो फिर उसको हम सत्य मानते हैं, वो बहुत ही अच्छी बात। और ब्रजेश जी अब मेरे मन में ये बात आ रही है कि जो लोक गीत हैं उनमें तो सभी प्रकार के विषय शामिल हैं, तो क्या मनुष्य को कर्म करने की भी सलाह या ऐसी कोई शिक्षा भी लोक गीतों में दिखाई सुनाई पड़ती है?
आपको बता दें कि जैसे एक आला काव्य बड़ा फेमस है और आला काव्य में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि मानव यही जा दुर्लभ है, आहे समय न बारम्बार, पाठ के ज्यो तरवर को कबू लौटना लागे डार, मर्द बनाए मर जेबे को खटिया पर के मरे बलाए, खटिया पर के जे मर जे है नाव डू पुरखन को जाए। तो आप देखिए इतनी महत्वपूर्ण बात कही है कि ये जो मानव शरीर है, लेकिन तुलसीदास जी ने भी कहा था बड़े भाग मानस तन पाया, तो ये बात लोग कभी भी कह रहा है कि ये बहुत मुश्किल से आपको मिला, कई योनियों में आने के बाद आपको मानव का रूप मिलता है, मानवता ये तो आपको इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना है। जैसे अगर पत्ता पेड़ से टूट गया तो वो द्वारा कभी डाल पर नहीं लग सकता, ऐसे ही आप द्वारा से फिर जीवन ये मानवता मिलेगा कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको जो करना है वो करना है, इसलिए आप कर्म करिए और खटिया पे पढ़ पढ़ के यानी बिना कुछ करे इस जीवन को क्या जीना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसमें आप आपके जो पुरखे हैं पूर्वज हैं उनको भी सत्कार करेंगे, उनका मान भी डुबाएंगे। तो आप कुछ ऐसा करिए जिससे आने वाली पीढ़ी आपको याद करे, तो ये हमारे लोक काव्य लोग कभी कह रहे।
तो मतलब एक सीख लोगों को, एक दिशा निर्देश कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए, ये भी लोकगीतों का हिस्सा रहा है और उन गीतों को गाते हुए वो ये संदेश देते हैं आने वाली पीढ़ी को कि किस तरह से जीवन जिया जाए, कर्म प्रधान हम बने क्योंकि कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। तो बहुत सुंदर उदाहरण आपने दिया। अब मेरे मन में ये लालच है ब्रजेश जी कि क्या लोकगीतों से धर्म की भी जानकारी मिलती है, ऐसा कोई उदाहरण आपके पास है?
सुनिता जी, आपने जो अभी बात बड़ी अच्छी की कि जो कर्म करें तो धर्म भी यही है, तो इसी से मिलता जुलता एक लोकगीत मुझे याद आ रहा है। इसमें एक ईसवी कवि थे और उन्होंने कहा है कि दीपक दया धर्म को जारो, सदा रात उजियारो, धर्म करे बिन कर्म खोले न, बिना खुशी जो उतारो, समझा चुके करत न रहियो, दिया तरे अंधियारो, कात ईश्वरी सुन लो प्यारे, लग जाए पार नजारो, दीपक दया धर्म को जारो। तो आप देखिए कि आप वो हमारा लोक कवि कह रहा है कि आप दया धर्म का दीपक प्रज्वलित कीजिए, जिससे कि आप अगर धर्म करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उजाला रहेगा, और धर्म दफ्तर नहीं करेंगे तो आपके कर्म रूपी जो भाग्य है, धर्म करके ही आप कर्म रूप की भाग्य की जो ताला है उसको खोल सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो मैं आपको जितना समझाता था उतना मैंने समझा लिया, और यह ना हो कि आप दूसरों को ज्ञान देते रहे और आपके खुद अज्ञानी बने रहे। दिया तरह अंधेरा नहीं रहना चाहिए, और कहा किसी सुन लो प्यारे, लग जाए पार में बारो। और इसलिए कहते हैं अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन पार हो जाएगा। और एक और लोकगीत में मिलता है, प्रभु के बारे में मिलता है, धर्म के बारे में मिलता है कि जो ईश्वर है वो भय संकट हो सहाई, अति अद्भुत बाकी गति पाई, रीति भरी भरी गए धारे, तंत्र से भद्र भय कर धारे, गाढ़ परे प्रहलाद बचाए, खम्भ फाड़ नरसिंह करे आए, ध्रुपद सुता की लज्जा राखी, वेद पुराण स्मृति सत्ता की। यानी कि आप यह चिंता नहीं करिए, आप कर्म करिए और परिणाम की चिंता मत करिए, क्योंकि आप जब कर्म करेंगे तो धर्म के साथ आप करेंगे कर्म को, तो निश्चित रूप से ईश्वर आपके साथ रहेगा। और जैसे प्रहलाद पर संकट आया था तो ईश्वर उसकी रक्षा के लिए आए, और जब द्रौपदी पर संकट आया था तब भी उसकी रक्षा की गई। तो आप ये मान के चलिए आपको कोई भी संकट आएगा तो वो आपकी सहायता करेगा, वो सहायता जब करेगा जब धर्मानुसार आप आचरण करेंगे, कर्म करेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो लोक गायक है वो धर्म की बात खास तौर पर करते।
तो ये तो बात हुई कि एक आध्यात्मिक उत्थान के लिहाज से लोकगीत क्या कह रहे हैं या चारित्रिक उत्थान की दृष्टि से क्या कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जीवन का समग्र रूप जो है वो लोक संगीत में समाया हुआ है, उनके सामाजिक सरोकार भी हैं। तो सहज ही मन में प्रश्न आता है कि कुछ सामाजिक सरोकारों से जुड़ी बातें भी क्या लोकगीतों में रही हैं। जैसे हम बात कर लें पानी की ही, तो क्या पानी के महत्व को समझाया गया है लोकगीतों में?
एक लोकगीत मुझे ऐसा याद आ रहा है कि शायद उससे ज्यादा पानी का महत्व कहीं नहीं समझाया गया होगा। ये जो घटना बांदा क्षेत्र पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर जो कोल महिलाएं हैं उनको पानी के लिए भोरा तालाब है काफी दूर, कम से कम 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है, और तो मिट्टी के जो गगरी है उससे जाते हैं, और चूंकि पथरीला एरिया है तो लौटते समय कहीं ऐसा ना हो ठोकर लग जाए और वो गगरिया गिर जाए, क्योंकि पूरी मेहनत पर पानी गिर जाएगा। तो वो लोग रास्ते पर एक टोटका उनका है कि अगर ये गाते जाएंगे तो हमारी गगरी नहीं फूटेगी। तो वो कहती जाती है कि भोरा तेरा पानी गजब कर जाए, गगरी न फूटे कसम मर जाए। यानी वो रास्ते पर ये कहती है कि मतलब मेरी गगरी न फूटना चाहिए, भले ही मेरा जो पति है वही चला जाए। तो आप देखिए पानी का कितना महत्व है, और इसको एक कवि है चंद्रका प्रसाद बिच्चू, उन्होंने बड़े अच्छी तरह से इसको अपने उसमें लय में लिया इसी बात को कि कसम मरे गगरी ना फूटे घटे ना बोरा तार, तैर रही फटी आंखों में जले सदा यह सवाल, बादल बरसे नदी किनारे तरसे कोल मड़ैया, बिन पानी के सूर जवानी हा दैया हा मैया। तो आप समझ सकते हैं कि पानी की कितनी कीमत है कि जल है तो पानी।
तो ये तो पानी की बात हो गई, और मुझे ऐसा लगता है ब्रजेश जी कि जो हमारी लोक संस्कृति है, जो हमारे लोक गीत हैं, वो अपने जीवन को सहज रूप से जो कुछ उनके जीवन में चल रहा होता है, जो कुछ वो अनुभव कर रहे हैं, जिसे वो दिन प्रतिदिन जी रहे हैं, उन सारी बातों को वो गाते हैं, और अनायास ही ये संगीत उनके जीवन में है। तो ये जो कृषक हैं या मजदूर हैं या मान लीजिए कोई गरीबी की स्थिति है, निर्धनता की स्थिति है, तो क्या इनको भी गाया गया है?
इस पर तो काफी बात की गई है, लेकिन हम अपने जो श्रोताओं को एक एक उदाहरण बताएंगे। जैसे आपने कृषकों की बात की, तो एक महिला है वो खेती करती है दिन भर घर भरी धूप में, और उसको कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि जो जमात जमींदार है वो सब कुछ ले लेता है। तो बड़ा वो उसका दर्द, वो कहती है कि बलम मेरे हाथन चूड़ियां नहीं है, मेहनत करत मुड़ से ऊपर, लगे राहू तो आपर धूपर, लगे नाच पे आंख साप की किनका नहीं बचैया, बलम मेरे हाथन चूड़ियां नहीं है। मतलब वो कहते हैं कि मुझे स्वाद की निशानी है चूड़ी, वो भी मेरे हाथ में नहीं है, मैं दिन भर मेहनत करती रहती हूँ, और लेकिन जब फसल कट जाती है तो जो बिचौलिए हैं वो पूरी फसल ले जाते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचता खाने के लिए। तो ये कृषकों की स्थिति की बात जो आपने कही थी। अब मजदूरों की बात करें तो मजदूर दिन भर मजदूरी करते हैं और लौटते हैं रास्ते भर तो बड़े अच्छा लोकगीत गाते हुए चलते हैं। वो कहते हैं कि गैल चलत बतियावे गलियारे, गैल चलत बतियावे, रैयत को भव राज कहाँ, कैसे हमको समझावे, धका तेल काऊ काऊ के सब दाल उधर भग गए, फटी कथरिया में काहू के और ठेगड़ा लग गए, मेहनत मारे भूखे सोवे, तलुआ माल उड़ावे, गैल चलत बतियावे गलियारे, गैल चलत बतियावे। तो आप समझ सकती हैं कि वो कैसे, मतलब उनको इस बात का दर्द है कि हमें दिन भर मेहनत करते रहते हैं और फिर भी हमारे गरीब है, दलिद्र है हमारे साथ, और हमारी जो फटी कथरिया जो है सोने की जो गद्दी है वो वैसी जो फटी है उसमें धीरे धीरे ठेला लगते जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम भूखे सोते हैं और जो कुछ नहीं कर रहे वो माल उड़ाते हैं, क्योंकि जो पालता रहे और अपने जो भी है उनके पास, तो उनके पास काफी धनाढ्य है तो ये मेहनत करते हैं और पूरा फायदा वो उठाते हैं। तो ये मजदूर की स्थिति की जो बात हुई, और लास्ट में हम गरीब की स्थिति पता है, तो गरीब भी बड़ा परेशान है, वो भी लोकगीत के माध्यम से अपनी परेशानी का जिक्र बताता है कि उतने टूट झोपड़े जा रही है, इतने नवीन बचा रहे हैं, उतने दाल और साग के हैं लाले पड़े, इतने कीमा कबाब चबा रहे हैं। आज के जो युग है उसको बड़ा करारा प्रहार है, गरीब है जो कमा के हमें दे रहे हैं, जिनकी वजह से हम खा पा रहे हैं और जिनका जो अनाज उपजा रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इसलिए उनके बनाए हुए घर में हम रह रहे हैं, हम पार्टी कर रहे हैं उनके घर पर, देखिए हाहाकार मचा हुआ है, उनकी झोपड़ी टूटी जा रही है और उनके जो बच्चे हैं वो भूख से मरे जा रहे हैं। आप देखिए कितना बेहतरीन जो जिक्र आपका कृषकों का, मजदूरों का, गरीबी का
तो मतलब एक सामाजिक स्थिति जो है वो भी लोग गीतों से मालूम होती है कि किस तरह का एक सामाजिक, एक जो किस तरह की व्यवस्था है और कैसे वो जीवन जी रहे हैं, किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, क्या हाल है उनके, उनके दुख सुख सब कुछ उसमें शामिल है। और देखिए लोकगीत जो है वो परंपरा से चल कर आते हैं, है ना, बहुत प्राचीन समय से एक कंठ से दूसरे कंठ में उनकी यात्रा रही है और इस तरह से वो आज भी उसी तरह से गाए जाते हैं। तो सहज ही मन में ये सवाल आता है कि चूंकि उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी प्राचीन काल में, जब लोक संगीत या लोकगीत बने होंगे या किसी ने गाया होगा, तो क्या महिला चेतना के स्वर भी लोकगीतों में मिले हैं या मिलते हैं, या स्वाधीनता संग्राम में जो योगदान उनका रहा है उसका कोई जिक्र, उसकी कोई चर्चा मिलती है?
सुनिता जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक राय प्रवीण थी, नर्तकी थी एक ओरछा की, और उनको एक बार मुगल शहंशाह ने बुलाया दरबार में, और चूंकि दरबार में बुलाया गया उनको जाना पड़ा, तो मुगल शहंशाह ने जब उनके प्रति गलत दृष्टि डाली तो उन्होंने बड़ा अच्छा उनके सामने बोला था कि बिनती राय प्रवीण की सुनिए सहा सुजान, झूठी पातर भकत है बारी बाए स्वान। तो आप ये सोचिए मुगल बादशाह की भी हिम्मत नहीं उससे हाथ लगाने की, और उन्होंने उनको बाइक दिया। तो मतलब ये कि महिला अगर चाहे तो किस प्रकार अपने जो ज्ञान है और ज्ञान से कैसे सामने वाले को बेहतर ढंग से समझा सकती है। और आपने जो राजनीतिक की बात की, तो जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था तब अंग्रेज जो क्रांतिकारी है जो उनको लेके जब वो पकड़े जाते थे उनको पेड़ पर लटका के फांसी दे देते थे, क्योंकि कई बहुत बड़ी संख्या में होता था, तो कोई ऐसी नहीं कि फांसी दिया तो पेड़ पर लटका देते थे। तो ये एक स्त्री है, आप देखिए कितनी उसकी चेतना देखिए, राष्ट्रवादी चेतना, कि उसको इस बात का गम है मन में कि मेरे पति को फांसी पे क्यों लटका दिया, और अगर वो लड़ते लड़ते मरते तो मेरे लिए कितनी गौरव की बात होती, मैं अपनी सहेलियों के साथ उनका गुणगान करती। तो बड़ा अच्छा लोकगीत मिलता है इस बारे में, वो कहती है मुए बड़ो ससेटो गुइया, नीके बर लटकाए सैया, लर्तन लर्तन बे मर जाते, उनकी करनी को हम गाते, कबों कहूं सपने में आते, मिलते हम गलवैया, मुए बड़ो ससेटो गुइया। तो आप बताइए कितना उस बात का दुख प्रकट कर रही है, इस बात को लेकर कि वो लड़ते लड़ते क्यों नहीं खत्म हुए, उनको पेड़ पर क्यों लटका दिया गया। तो आप समझ सकती है कि किस प्रकार लोकगीतों में एक महिला की चेतना मिल रही है, कि उसको इस बात का दुख है कि मेरे पति काश लड़ते लड़ते मरते तो कितना मेरे लिए गर्व की बात हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतिहास में हम कभी भी उन महिला स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को पन्ने पर इतिहास के नहीं ला सकते थे, क्योंकि इनकी जानकारी सिर्फ लोकगीतों में ही मिल रही है, और जब लोकगीतों में जानकारी मिली उसको फिर आर्काइवल सोर्सेज से टैली किया तो पता चला ये वास्तव सही है। जैसे एक जिगनी की नन्ही रानी थी, मैं बता रहा हूँ किसी भी इतिहास में उसका जिक्र नहीं है, लेकिन ये लोकगीत मिला तो हम उससे उन तक पहुंचे। तो पता चला कि उन्होंने किस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ लुआ लिया था। यह लोकगीत इस प्रकार है, नन्नी रानी ऊधम करती जिगनी में दम भरती, संग जवान 700 लेके फौज तरंगन लड़ती, लूट खजानों छुड़ा प्यारन मंदिर डेरा करती, पूजा करती राम स्मरती तात्या से मिल चलती, आग अजारे देती बेतो गढ़ ग्वालियर धरती, ऊधो दास ए रीति सो प्रीत देश को करती। तो आप देखिए कितना बेहतरीन लोकगीत है जो बता रहा है कैसे अंग्रेजों को अपने साथ 700 जवानों को लेकर उनसे लड़ती थी, मंदिर में डेरा जमाती थी क्योंकि राजपाट तो चला गया था, और से मिलकर वो युद्ध भी लड़ती थी और ग्वालियर तक उन्होंने अपना आतंक फैला रखा था अंग्रेजों तक। तो आप देखिए लोकगीतों में कितनी अच्छी चेतना मिल रही है। और एक और बांदा के बारे में मिलता है, बांदा पर कई लोकगीत मिलता है, उसमें मिलता है बांदा और लुटो रात को गुइया शीला देवी लड़ी दौड़तियां संग में शौक निकरियां अंग्रेजन से करी लड़ाई मारे लोग लगैया। तो आप समझ सकती है कि ऐसे अलग अलग महिलाओं के नाम भी मिल रहे हैं लोकगीतों में, तो महिलाओं के प्रति जो चेतना है वो कितनी बेहतरीन ढंग से मिल रही है। और जो रानी लक्ष्मीबाई ने स्वराज की बात की थी तो आपको बता दें कि लोकगीतों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि रानी लक्ष्मीबाई वो पहली महिला थी जिसने स्वराज की बात की थी। और लोकगीत में मिलता है हमें जो रानी लक्ष्मीबाई कहती है, जिए पराए बसे हों जासे भलो वीर बिस खाके मर जाए, होए सूर सो तेगा ताने अंग्रेजन को मार भगाए, अंग्रेजन को राज न चाने मिलके अपनो होए स्वराज, परदेशन की काट गुलामी करिए अब रैयत को राज। तो आप देखिए कितना उसमें बताया जा रहा है कि जो कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता का राज जनता के लिए, तो रानी लक्ष्मीबाई भी यह बात कह रही है कि रैयत का राज करना है अंग्रेजों को यहाँ से हटा के, और स्वराज की बात भी कर रही है कि मिलके अपनो होए स्वराज यानी हम कैसे भी करके स्वराज लाए। तो आप समझ सकती हैं कि राष्ट्रवादी चेतना महिलाओं में पुरुषों से भी अधिक दिखाई देती है लोकगीतों में अगर हम देखते हैं तो, और जब वास्तविक जानकारी लेते हैं तो ये बात सत्य उभर कर सामने आती है। तो आप देखिए लोकगीत इतना अच्छा महिलाओं की स्थिति का, महिलाओं की चेतना का और महिलाओं के स्वाधीनता संग्राम में योगदान का और महिलाओं की बुद्धिमत्ता का वर्णन हमें दिया गया है।
तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही ब्रजेश जी, हमने जाना लोकगीतों में अंतर्निहित इतिहास और उसकी संस्कृति को, कि किस तरह से लोकगीत इतिहास का स्रोत हो जाते हैं। आपने बताया कि बहुत से ऐतिहासिक चरित्र ऐसे हैं जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया जिनका नाम भी नहीं मालूम था, लेकिन लोकगीतों के जरिए उनकी पहचान हुई और फिर उनको जब ढूंढा गया तो मालूम हुआ कि हाँ ऐसा कोई व्यक्ति भी था, ऐसी कोई महिला भी थी जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। तो एक बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हम कहते भी हैं कि लोकगीत जो हैं वो हमारी धरोहर हैं और इतिहास को भी उसमें हम पा रहे हैं, देख रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर जानकारी आपने दी, बहुत महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी, आपका बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।
धन्यवाद।
लोकगीतों में अंतर्निहित इतिहास और संस्कृति, इस विषय पर हमने आज सीप के मोती कार्यक्रम में चर्चा की, और हम चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि ये जो समय है जिसमें हम आधुनिक संगीत की ओर बढ़ते हैं, हर तरह के संगीत को पसंद करते हैं, थोड़ा सा हम अपनी जड़ों की ओर भी चलें, लोकगीतों की ओर भी चलें, ये धरोहर हैं। अगर आपके परिवार में आपकी दादी आपकी नानी किसी तरह का कोई लोकगीत गाती हैं तो उन्हें आप भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, इस धरोहर को हम यूं ही आगे बढ़ाते रहें, ये हम सबका दायित्व बनता है। क्योंकि लोकगीत सिर्फ आनंद का उत्सव नहीं है, इनमें गुजरा हुआ समय ठहरा हुआ है, इतिहास की कुछ बातें मिलती हैं, कुछ सूत्र मिलते हैं, बहुत बार बहुत से अनुष्ठानों का जिक्र होता है, परंपराओं का जिक्र होता है, हमारी आस्थाएं इसमें शामिल हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर से पुनर्जीवित होकर हमारे जीवन में शामिल होती हैं।
सीप के मोती, सर्वांगीण विकास और चरित्र निर्माण पर केंद्रित इस कार्यक्रम का आज का अंक आपने सुना। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर आपसे होगी मुलाकात। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।